أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد اعزائنا الکرام آزادان مظلوم سید الشہداء مظلوم کربلا کے غم کو بنانے کے لیے یقیناً ان مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ان مجالس کی بدولت ان مجالس کے طفیل اس ذکر کے طفیل ہم ان تعلیمات کو سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور ان کے بعد آنے والے جو خلفاء اور جانشین تھے ان کے جو اوصیات ہیں ان کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ان مجالس کے بدولت ان مجالس کے طفیل ہم قطرہ قطرہ کر کے ان فرامین کو ان ارشادات کو ان تعلیمات کو سیکھتے ہیں اور پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں मौजू सुखन इमाम सज्जाद अलैहि सलातु वस्सलाम और मोमिनीन की तरबियत के उनवान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आपके सामने उस आयत को जिसको सरनामे कलाम के तौर पर पेश किया उसके हवाले से चंद मारूजात बयान किया और जैसा कि वाज़ह किया गया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की तरबियत जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करते हुए नज़र आते हैं उस किताब में कि जो इमाम से मंसूब है सहीफ़े सज्जादिया सहीफ़े कामिला, सबसे ज़्यादा हमें अगर किसी चीज़ की तालीम नज़र आती है उसके अंदर उस किताब में मौजूद है जो फकरा जो जुमला जो सेंटेंस कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा दोहराया है इस किताब के अंदर वो है सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اللهم
اللهم
صل
सल्ल अला
على
मुहम्मद
محمد
व
وآل
आले मुहम्मद।
محمد
और मुख्तलिफ अंदाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजा। उसके बाद परवरदिगार आलम से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ चीज़ों का सवाल किया, परवरदिगार के कुर्ब का, परवरदिगार की खुल्लत का, परवरदिगार की नेमतों का, परवरदिगार का शुक्र किया, परवरदिगार की एहसान को फरामोश न किया और बार बार परवरदिगार की नेमतों को याद करते रहे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। और यकीनन ये सब हमारे लिए भी एक सबक है, हमारे लिए भी एक दरसगाह है, हमारे लिए भी एक मैसेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक मदरसा है कि इंसान जाने के परवरदिगार आलम से इंसान किस अंदाज़ में राबता रखे, किस अंदाज़ में इंसान परवरदिगार से जुड़ा रहे। और साथ ही साथ ये सब भी बतलाया इन्हीं दुआओं के अंदर, इन्हीं मजामीन के अंदर छुपा कर, जाहिर है क्योंकि उस दौर के अंदर इस तरीके से फ़ज़ाइल और रिवायात और तारुफ और मारिफत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, मारिफत इमाम अलैहिस्सलाम के परवरदिगार आलम के ये जो बंदे हैं ये किस किस मनसब के हामिल हैं, किस फजीलत के हामिल हैं, परवरदिगार ने इन्हें कौन कौन सी खसूसियात दी हैं, कौन कौन सी फजीलतें दी हैं, बयान नहीं किया जा सकता था उस दौर के अंदर। लिहाजा दुआओं के अंदर, जुमलात के अंदर पोशीदा रख कर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन की तरबियत की और उन्हें बतलाया कि देखो ये अहले बैत है कौन, उनका तारुफ करवाया कि देखो ये कौन सी हस्तियाँ हैं। और हमारा सिलसिले गुफ्तगू इसी हवाले से चल रहा था कि दुआए अरफा जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है, जो दुआए अरफा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मांगी है अरफात के मैदान में जहाँ तमाम मुसलमान मौजूद हैं, इमाम अलैहिस्सलाम किस अंदाज़ के अंदर दुआ मांग रहे हैं, किस अंदाज़ में इमाम अलैहिस्सलाम अपना तारुफ भी करा रहे हैं, अपने घराने का तारुफ भी करा रहे हैं, किस अंदाज़ से करा रहे हैं कि दुरूद भेज रहे हैं। परवरदिगार तो दुरूद भेज, किन पर दुरूद भेज, अला अता बे अहले बैत ही अल्लज़ीन अख्तरतहुम ले अम्रिक, जिन्हें तूने अपने अमर के लिए चुना, और वजअलतहुम खज़नत इल्मिक, और वो अफराद के जिन्हें तूने अपना खजीन अमानतदार बनाया, किसका अमानतदार बनाया, अपने इल्म का अमानतदार बनाया है। इल्म के एतबार से चंद मारूजात आपके सामने बयान किए कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम की जानिब से इल्म रखते हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जो परवरदिगार आलम की जानिब से इल्म हासिल करके इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाई हैं, परवरदिगार आलम ने इन्हें खास इल्म अता किया है जो बाकी तमाम इंसानों से मुनफरिद है। और गुफ्तगू रही कि किस अंदाज के अंदर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरे लिए मसनद खिलाफत बिछाई जाए तो मैं कुरान वालों के लिए कुरान से, तौरात वालों के लिए तौरात से, जबूर वालों के लिए जबूर से, इंजील वालों के लिए इंजील से फैसला करके दिखाऊंगा। अभी तो कुरान
सुभान
नाजिल नहीं हुआ है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब दस्ते रसूल में आते हैं तो सूरह मोमिनून की तिलावत कर रहे हैं, ये है अमीरुल मोमिनीन के जो सूरह मोमिनून की तिलावत करते हुए नजर आते हैं।
अल्लाह, क्या कहते हैं,
قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. لکھا ہے تواریخ نے کہ امیر المومنین سورہ مومنین کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس عالم میں رسول کے ساتھ موجود ہیں کہ جو آپ کے سامنے یقیناً آپ نے سماعت فرمایا کہ کون تو نبی والآدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے ان ہستیوں کا علم, یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیا جانے والا علم. آصف برخیہ, یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا, ملکہ سبا, ملک سبا کی ملکہ تھی بلقیس, یہ بھی یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا. قرآن مجید کے اندر قصہ موجود ہے, بچوں کی دینیاتی کتاب بھی آتی ہے ملکہ سبا کے نام سے, اس کے اندر بچے کہانیاں بھی پڑھتے ہیں. سلسلہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ مالک تھے, شہنشاہ تھے, پروردگار عالم نے انہیں سلطنت عطا کی تھی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام پہنچا رہے تھے پروردگار کی توحید کا, پروردگار کے دین کا پیغام پہنچا رہے تھے. یہ جو ملکہ تھی, ملکہ سبا بلقیس, ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اس پیغام کو سنوں کہ جو نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچا رہے ہیں, اور چاہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو سنیں. لیکن اس کے پاس ایک قیمتی تخت موجود تھا, ایک انتہائی قیمتی تخت. اچھا, اب یہ تخت کہتی ہے کہ میں نے اس تخت کو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, سات کمروں کے اندر چھپایا. سات کمروں کے اندر میں نے اس تخت کو محفوظ کیا تاکہ جب میں یہاں سے جاؤں گی حضرت سلیمان کے پاس ملنے کے لیے تو ظاہر ہے ایک طولانی سفر ہے, کئی دن لگ جائیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی اسے نقصان پہنچا دے اس قیمتی شے کو. اب وہ تخت سات کمروں کے اندر بند کیا, قفل کیا, تالا لگایا, لاک کیا, ایک نہیں ساتوں کے ساتوں کمروں کو تالا لگایا, اور ساتوں کے ساتھ سات کمرے, ایک کے اندر دوسرا کمرہ ہے, سات کے سات کمروں کو اس نے ملکہ سبا نے قفل کر دیا, بند کر دیا, تالا لگا دیا تاکہ کوئی بھی یہاں تک نہ پہنچ سکے. اندازہ کر رہے, ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. روایات کی روشنی میں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم کتنا ہے, یہ ہے ملکہ سبا. اب یہ چلی, جیسے ہی چلی ہیں وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے باخبر ہیں کہ ملکہ سبا ان کے پاس آ رہی ہے اور آ کر تعلیمات حاصل کرنا چاہتی ہے, پروردگار کے دین کی جانب آنا چاہتی ہے. ایک بار تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہے.
سبحان اللہ.
ملکہ سبا جو کہ بلقیس ہے, انتہائی دور کا سفر ہے, ایک دوسرے ملک کے اندر, دوسرا دوسرے ملک کے اندر, وہاں سے جائے اور اس تخت کو لے کر آئے, اور کیسے لے کر آئے, کب لے کر آئے, ملکہ سبا کی یہاں پہنچنے سے پہلے. اب یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام درباریوں کے درمیان. ایک شخص کے جس کا نام ملا, کہ جس کو کہا گیا کہ یہ حضرت سلیمان کا بھانجا بھی تھا, کیا آصف برخیہ نام کا شخص کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا آ کر, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے, پلک جھپکنا کیسے کہتے ہیں, پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی, کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں کیا کروں گا, میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آ جاؤں گا. بڑا دعویٰ ہے. ابھی ملکہ سبا ایک فرسق کے فاصلے پر موجود ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے, ملکہ سبا کے آنے سے پہلے نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے یہاں پر لے کر آؤں گا.
سبحان اللہ.
کیوں؟ راز کیا تھا, وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قرآن کی تفاسیر کے اندر بھی ارشاد ہوا, قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اب یہ حروف ہیں کیا, जो हुरूफ के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, और ना इन हुरूफ तक कोई पहुंच सकता है कि इन हुरूफ की हकीकत क्या है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसिम बरखिया को एक हर्फ का इल्म आता था, इल्म मिनल किताब, किताब का कुछ इल्म मौजूद था इसके पास, जिसकी बदौलत वो पलक झपकने से पहले क्या हुआ, तख्ते बिल्कीस को लेकर आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। इससे पहले कि मलका सभा वहां पर पहुंचती, वो तख्त वहां पर मौजूद था। कुरान ने क्या फरमाया, काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, ये वो है कि जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म है। मिनल किताब, मिन जो है ना अरबी में तरईज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कुछ के लिए, बाज के लिए, थोड़े के लिए। लहू इंदहु इल्म मिनल किताब, उनके पास किताब का कुछ इल्म मौजूद था। अब चलिए कुरान की दूसरी आयत की तरफ, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह अकबर, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, वमन इंदहु इल्मुल किताब। ए परवरदिगार कह दीजिए, क्या कह दीजिए, रसूल कह दीजिए, क्या कह दीजिए, परवरदिगार कह रहे, ए रसूल कह दीजिए, कफा बिल्लाही काफी है गवाही के लिए, कौन काफी है गवाही के लिए, एक परवरदिगार आलम की जात काफी है। कुफार से कह दीजिए कि गवाही के लिए, बैनी व बैनकुम मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए एक परवरदिगार की जात काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो काफी है कि जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। आसिफ बरखिया जिसके पास इल्म मिनल किताब है, किताब का कुछ इल्म है, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को हजरत सुलेमान के पास लेकर आए। इमाम फरमा रहे हैं कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो अहले बैत था।
क्या कहने, क्या कहने, बड़ा खुशनूदी ताजील इमाम जमाना बाबाज बुलंद सलावत,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये लहू इंदुल इंदहु इल्मुल किताब है। यहां पर आसिफ बरखिया की फजीलत को कम करना मकसूद नहीं है, परवरदिगार ने जिसे जो मर्तबा दिया है और मरातिब का ख्याल रखने की जरूरत है। हिफ्ज मरातिब हो, हिफ्ज मरातिब का मतलब यह नहीं है कि इंसान दूसरे वाले को, दूसरे वाले की तौहीन करता हुआ चला जाए और दूसरे वाले को नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला उसको किसी कम मंजिलत पर समझता हुआ चला जाए। अगर कहीं पर यह कहा जाए कि अस्सलाम वालेक या वारिसा आदम सफ़तिल्ला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंसान जो है वो कोई हकीर और कमतर जाने। नहीं, परवरदिगार आलम के नबी हैं, परवरदिगार आलम के बरगुजीदा बंदे हैं, परवरदिगार आलम ने इन्हें अपना हादी और नुमाइंदा बनाकर भेजा है। लेकिन हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रहना चाहिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दूसरे वाले को आप जो है वो उसके मर्तबे से गिरा दें, उसके मकाम से गिरा दें, उसकी फजीलत से गिरा दें। नहीं, अगर कहीं कहा जाए कि फ़ख्र ईसा है, फ़ख्र इब्राहिम है, फ़ख्र नूह है, फ़ख्र आदम है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को, और हमारे उलमा ने इस पर किताबें लिखी हैं, तंज़ीहुल अम्बिया एक पूरी किताब है, कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सवाल और शुबहात मौजूद हैं कि यहाँ पर तर्क हला हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, तो इसका क्या सिलसिला है, इसका क्या जवाब बनता है, इसका क्या जवाब बनता है, इसका क्या जवाब बनता है। क्यों? इसलिए कि हमारे अकीदे के मुताबिक ये हस्तियां मासूम हैं। हाँ, तर्क औला हो सकता है, लेकिन तर्क औला इस्मत के मुनाफी नहीं है। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू के अंदर, परसों की गुफ्तगू के अंदर इस हवाले से कुछ मारूजात आपके सामने आएंगे कि नबी और इमाम के अंदर जो तर्क औला का फर्क है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने रहेगी। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या फरमा रहे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुआ के अंदर, वजअलतहुम खज़नत इल्मे, और आप परवरदिगार तो दुरूद नाजिल फरमा उन लोगों पर कि जिन्हें तूने अपने इल्म का खजीन बनाया है। तेरा इल्म जिनके पास मौजूद है, जहां से सादिर होता है, जहां से फूटता है ये इल्म। कौन है ये? इंदहु इल्मुल किताब है, जिनके पास किताब का पूरा के पूरा इल्म मौजूद है। मुझे उस बहस के अंदर नहीं जाना कि आइम अथार अलैहिस्सलाम के इल्म की हदूद क्या हैं, आइम अथार अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से क्या तफासील मौजूद हैं, कौन कौन से अकवाल मौजूद हैं। हम किसी और की बात नहीं कर, हमारे अपने उलमा की बात कर रहा हूँ, जलील क़द्र उलमा की बात कर रहा हूँ। शेख मुफीद क्या कहते हैं आइम अथार के इल्म के बारे में, शेख तूसी क्या कहते हैं, शेख सदूक क्या कहते हैं, सैयद खुई क्या कहते हैं, शेख मुर्ज़ा अंसारी क्या कहते हैं, मुझे उन तफासील के अंदर नहीं जाना। लेकिन बहरहाल एक बहस है क्योंकि हमारे पास जो रिवायात हैं वो मुख्तलिफ अंदाज की रिवायात हैं कि जो मुतबर रिवायात हम तक पहुंची है आइम अथार अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से। लेकिन फ़कत एक जुमला कहते हुए आगे चला जाऊं कि शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह कि जो हौज़े इल्मिया की वो शख्सियत कि अगर दौरे गैबत में नाइबीन खास के बाद से अगर इंसान और उलमा के दरमियान गुफ्तगू रहे कि कौन है कि जो दौरे गैबत के अंदर नाइबीन खास के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा आलम शख्सियत गुजरी है, सबसे ज्यादा आलम, एक बार तो होता है हम जिंदों के दरमियान आलम तलाश करते हैं, अगर मैं कहूं कि जिंदों और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम को शामिल करके ये फैसला किया जाए कि कौन सी हस्ती, कौन सी शख्सियत है, कौन सा आलम ऐसे है, कौन से बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो आलम गुजरे हैं, वो शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है कि जिनकी किताबें आज भी हौज़े इल्मिया के अंदर राइज है। शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्मे इमाम पर कलम उठाते हैं और इल्मे इमाम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं, रिवायात को नकल करते हैं, जिस अंदाज की रिवायात वारिद हुई है, तमाम रिवायात को नकल करने के बाद एक ही जुमला कहते हैं क्या कि आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने कितना इल्म अता किया है ये फैसला हम और आप नहीं कर सकते, कोई नतीजा नहीं लिया जा सकता है, परवरदिगार आलम जानता है कि परवरदिगार आलम ने अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता किया है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले
मोहम्मद। ये है अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का। लेकिन कुरान का इल्म अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को कतन दिया गया है, लहू इंदहु इल्मुल किताब, जिनके पास किताब का इल्म है, किताब से मुराद कुरान मजीद, जिनके पास किताब का पूरा के पूरा इल्म है। एक रावी नकल करता है कि एक शख्स के जिसका नाम असौदा या अस्वदा उसको जैसे प्रोनाउंस किया जाए, कहते हैं कि मैं दाखिल हुआ अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम के पास, एक मरतबा दुरूद पढ़ दिए इमाम की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दाखिल हुआ इमाम के पास। अच्छा देखिए मैं रिवायत को मुकम्मल करता हूँ उसके बाद इस बात को जिक्र करता हूँ। इमाम के पास आए अमीरुल मोमिनीन के पास और आकर कहने लगा कि मौला सरक तो मैंने चोरी की है, फताहिर नहीं, मुझे पाक कर दें। यानी क्या मतलब पाक कर दें? यानी मैं दियत जो हद बनती है मेरी वो हद जारी करें आप, खलीफे वक्त हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम। कहा कि आप मेरे लिए हद जारी करें। कहा कि अच्छा। इमाम ने उससे पूछा कि क्या वाकई तूने चोरी की है? देखिए कहाँ तक लाना चाहता हूँ मैं, एक और शख्स भी है जो है ज़ुरकान इब्न अभी दाऊद है और उसका दोस्त, मैं इन दोनों रिवायतों को एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। ये एक रिवायत एक मकाम पे पहुंची, उसको अपने जहन में रखिए, दूसरी रिवायत के साथ चलते हैं। कहा कि इब्ने अभी दाऊद एक मरतबा एक दिन आया और बहुत ही परेशान था। कहां से आया? मोतसिम के दरबार से आया। मोतसिम के दरबार से आया, बहुत ही परेशान था। कहा कि भाई क्या हुआ? कहा कि मैं पसंद कर रहा था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरा दिल चाह रहा था कि आज से 20 साल पहले मैं इस दुनिया से चला गया होता। अरे खैरियत? अच्छा रिवायत कर रहे हैं ज़ुरकान इब्ने अभी दाऊद से। कहा कि खैरियत, ये कौन सी दुआ है, ये कौन सी ख्वाहिश है? कहा कि हाँ आज जो हुआ। कहा कि क्या हुआ? कहा कि वो अभी जाफर, यानी कौन? मोहम्मद बिन अली बिन मूसा अर्रिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक बार दुरूद पढ़ दीजिए इमाम की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा कि मोतसिम के सामने मौजूद थे और कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि बस कुछ नहीं, एक मरतबा एक सारे चोरी करने वाला आया और उसने आकर इकरार कर लिया उसके सामने। क्या इकरार कर लिया? कहा कि मैंने चोरी की। अच्छा अब फिक्ह के अंदर एक कायदा मौजूद है, क्या? इकरारुल उकलाए अला अनफुसिहिम नाफिज़ुन। वहां पर अमीरुल मोमिनीन के पास आकर उसने इकरार किया है, यहां पर मोतसिम के पास आकर उसने इकरार किया है, ठीक है ना? दो रिवायतें साथ साथ चला रहा हूं मैं। एक रिवायत यह है कि एक शख्स है असौदा कि जो अमीरुल मोमिनीन के पास आया और उसने आकर इकरार कर लिया कि मैंने चोरी की। यहां पर यह शख्स आया और इसने आकर मोतसिम के पास इकरार किया है कि मैंने चोरी कर ली। अच्छा जी, अब जो इकरारुल उकला है अला अनफुसिहिम नाफिज़ुन है, यानी क्या मतलब? एक फिक्ह का कायदा है, समझते चलिए। اگرچہ کہ اس کا ہمارے اصل مطلب سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، چونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس ذکر کے توفیل، اس ذکر کی بدولت ہم اور آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ اقرار القلاء علی الانفسہم نافذ فقہ کے اندر ایک قاعدہ، یعنی کیا مطلب، یعنی عاقل آ کر اگر اپنے ہی خلاف کوئی بات اقرار کر لیتا ہے تو وہ نافذ ہو جاتی، کوئی اور آ کر کہے گا تو کیا ہوگی، گواہی طلب کی جائے گی۔ مثلا فلاں شخص نے چوری کر لی ہے لیکن وہ آ کر نہیں اقرار کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں نے چوری کر لی، فلاں نے جو ہے کچھ مال لوٹا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ بھائی آپ جو ہے گواہ لے کر آئیے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور گواہی کے بعد جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص آ کر خود ہی اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، تو اب یہاں پر گواہیاں نہیں طلب کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف ہے، اقرار القلاء علی انفسہم کیونکہ یہ اس کے خلاف ہے، لہذا یہ گواہی قبول کر لی جائے گی اس سے۔ اچھا، اب گواہی قبول کر لی گئی، گواہی تو قبول کر لی گئی، اب جو ہے معتصم کہہ رہے کہ بھائی کیسے جو ہے وہ اس پر حد جاری کی جائے، کیسے اس پر جو ہے وہ حد جاری کی جائے۔ وہاں پر دربار کے اندر سب موجود ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام بھی دربار کے اندر موجود ہیں۔ پہنچانا چاہتا ہوں، عنده علم الکتاب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے، کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا، وجعلتهم خزنة علم، پروردگار تو ان کو، ان پر درود نازل فرما، کن پر درود نازل فرما، جو تیرے علم کے خزین اور امانت دار ہیں۔ سبحان اللہ، اب چلیے امیر المومنین والی روایت کی جانب، وہاں پر بھی آ کر چور نے اقرار کیا، اسودا نے، ایک لوٹنے والے نے آ کر اقرار کیا، جیسے اقرار کیا امیر المومنین نے پوچھا کہ واقعی تو نے چوری کی ہے، امام نے اسے ایک آپشن دیا کہ شاید غلطی ہو گئی ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو، کہا نہیں میں نے چوری کی، دوسری مرتبہ پوچھا کہا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے، تیسری مرتبہ پوچھا کہا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے۔ جب تین مرتبہ اس نے اقرار کر لیا نا، تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام علیہ السلام کے جملے کیا ہیں، اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو، اس کے ہاتھوں کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، کاٹ دیا امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو، کیوں؟ اس لیے کہ چور کی حد یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو کاٹا، ایک مرتبہ رستے میں گیا چلتا ہوا، اور جا کر امام علیہ السلام کی مدح کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، کہتا ہے قطعنی امیر المومنین، میرے ہاتھوں کو امیر المومنین نے کاٹا ہے،
سبحان اللہ،
امام المتقین، متقین کے امام نے کاٹا ہے، قائد الغر المحجلین، یعصو بالدین، سید الوسیین، کس نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے؟ امام علیہ السلام کی فضیلتیں پڑھتا جا رہا ہے، امام علیہ السلام کے القاب پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام اس رستے سے گزرے، اور دیکھا کہ یہ شخص بابا کے فضائل پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اچھا عجیب پریشان ہو گئے، گھر پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین رائینا اسودا یمدحک فی الطریق، مولا بابا ہم نے دیکھا کہ وہ شخص رستے میں آپ کی مدح کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کام کیا، فبعث، ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لے کر آؤ اسے میرے پاس، اسے میری بارگاہ میں دوبارہ لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا اور امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، کہا کہ قطعتنی وہ انت تمدحنی، میں نے تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور تو میری مدح کر رہا ہے، تو میری تعریف کر رہا ہے، تو میری فضیلتیں منقبتیں بڑھ جا رہا ہے، میں نے تیرے ہاتھوں کو قطع کیا ہے۔ کہنے لگا کہ مولا بس میرا قلب اور میرا دل آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس کے لیے دعا کی، کیا کیا امیر المومنین نے اس کے لیے دعا کی، بتلانا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم پروردگار عالم کے اذن اور اجازت سے یہ کام کیا،
کیا
دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا امیر المومنین نے، اس کے ہاتھوں کو، اس کی انگلیوں کو جہاں سے قطع کیا تھا وہاں پر لگایا پروردگار کی جانب، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور ایک مرتبہ جس مقام سے اس کی جو انگلی جدا ہوئی تھی اسی مقام پر دوبارہ واپس پلٹ کر آ گئی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ امیر المومنین کہ کس انداز میں ایک شخص کی ہدایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک شخص کو حد جاری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ فضیلتیں پڑھ رہا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ دوبارہ واپس پلٹاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے، پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا ہے ہستیوں کو کہ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس چور آیا और आकर उसने इकरार किया। लेकिन जब मोतसिम के पास आया, देखिए फ़र्क देखिए, अमीरुल मोमिनीन के पास जब कोई आया है तो अमीरुल मोमिनीन ने किसी से सवाल नहीं किया है, क्यों? इसलिए कि ये वो थे कि जो रसूल की जगह पर बरहक बैठे थे।
क्या कहने, क्या कहने?
लेकिन जो रसूल की जगह पर बरहक नहीं बैठे थे मोतसिम, जाहिर अब्बासी खलीफा है, परेशान हो गया, क्या किया जाए यहाँ पर। जानता है कि अगर कहीं से जवाब मिलना है तो वो सादिक आले मोहम्मद का दरवाजा है। जानता है कि वो सादिक आले मोहम्मद का दरवाजा है। एक मरतबा सबसे सवाल किया कि क्या किया जाए, किसी ने कहा कि हाँ भाई इसके हाथों को काट दिया जाए। कहा कि कैसे काटा जाए? कहा कि परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया है? कुरान की आयत है, फम सहू बि वुजूहिकुम व अयदीयकुम, तुम लोग क्या करो, तयम्मुम की आयत है। एक शख्स आया, उसने जवाब दिया, कहा कि भाई इसके हाथों को काटा जाए, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे काटा जाए। कहा कि इसके हाथों को ऐसे काटा जाए कि परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमाया, फम सहू वुजूहिकुम व अयदीयकुम, तुम लोग मसा करो। कहाँ मसा करो? बि वुजूहिकुम व अयदीयकुम, अपने चेहरों का मसा करो और अपने हाथों का मसा करो। यानी हाथों का मसा करना है तयम्मुम में, तयम्मुम की आयत। कैसे मसा करेंगे, कहाँ से करते हैं? कलाई से, कुरसू अरबी में कहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हाथ कटेंगे। कहाँ से हाथ कटेंगे? कलाई से हाथ कटेंगे। कहा कि मल हुज्जत वाला तालिक, क्या दलील है इस बात पर कि उसके हाथों को कलाई से काटा जाएगा? मुश्किल क्या है? देखिए असल मसला कहाँ था, मसला ये था कि कुरान की आयत है, अस्सारिको वस्सारिकतु फक्तऊ अयदीहुमा, चोर करने वाला, चोरी करने वाला चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो जो भी हो, उसके हाथों को काटा जाएगा। फक्तऊ अयदीहुमा, यद हाथ की जमा, प्लूरल अरबी में होता अयद, अयदी, ठीक है ना। तो हाथों को काटा जाए। अब सवाल यह है कि हाथ है क्या? हाथ किसे कहा जाएगा अरबी में? आया उंगलियां काटी जाएगी, या कलाई तक हाथों को काटा जाएगा, कोहनी तक हाथों को काटा जाएगा, या बाजुओं से इंसान के हाथ को काटा जाएगा? चोर के हाथ अब बतलाए कौन? कुरान की आयत तो ये मुतशाबे है, कुरान की आयत तो ये मुजमल है। इस आयत के अंदर तो जुहूर नहीं है कि कैसे पता चलेगा यहाँ पर यद से मुराद क्या है। देखा आपने वो कला, वो आयत जो मैंने कल आपके सामने पढ़ी थी, वअम्मल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन, जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, शहवत की खातिर, फितने की खातिर, न जानने की वजह से क्या करते हैं? तावीलात करते हैं।
क्या कहने?
जानते नहीं है कुरान का इल्म। ये वो हस्तियां हैं कि मान इंदहु इल्मुल किताब, जिनके पास पूरी किताब का इल्म मौजूद है। अच्छा तो सवाल किया एक से, उसने आकर क्या कहा? कहा कि भाई ये कोनियों कलाइयों से काटी जाएगी। कहा कि अच्छा क्या दलील है? मल हुज्जतु अला ज़ालिक, क्या दलील है तुम्हारे पास कि इसे हुज्जत के इसे जो है कलाइयों से काटा जाएगा? कहने लगा कि परवरदिगार ने कुरान में इरशाद फरमाया तयम्मुम के वुजूब वाली आयत में कि फमसहु वुजूहकुम व अयदीयकुम, तुम अपने चेहरे और अपने हाथों को मसा करो। तो हाथों का मसा तो यहां से होता है, इसका मतलब हाथ यहां पर है, इसका मतलब हाथ यहां पर है। अच्छा तो एक राय, एक कौल, एक नजरिया क्या आ गया कि चोर के जो हाथ काटे जाएंगे वो कलाई से काटे जाएंगे। एक मरतबा मोतसिम ने किसी दूसरे से पूछा, कहा कि बताओ तुम्हारी क्या राय। एक शख्स खड़ा हुआ और आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? कहने लगा कि परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर एक मकाम पर इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया? कि जहां पर परवरदिगार आलम ने वुजू की बात की है। और क्या बात की है? कहा कि फक्सुलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफिक।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब वुजू करने का तरीका परवरदिगार आलम ने बताया तो क्या बताया? फक्सुलू, फक्सुलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफिक। मिरफक कहते हैं अरबी में कोहनी को। तुम कहाँ से वजू करो? वजू हकुम, अपने चेहरों का वजू करो। वाजिब क्या है? चेहरे के अंदर, वजू के अंदर वाजिब क्या है? कि चेहरा इंसान धोए, चेहरे के बाद हाथ। हाथ कहाँ से कहाँ तक है? कोहनियों से लेकर उंगलियों के सिरों तक। तो कुरान ने बताया इलल मराफिक, ये जो मराफिक कोहनियाँ हैं यहाँ से धोना है। देखिए अगर इंसान दर अहले बैत से दूर हो तो ये कुरान हसबुना किताब अल्लाह की किताब काफ़ी है। ये किताब से ही दलीलें दिए जा रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि हसबुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफी है, निकाल के दिखाइए कि इस आयत के अंदर परवरदिगार ने जब कहा कि चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे तो हाथ से मुराद क्या है? इसी कुरान के अंदर एक मरतबा परवरदिगार आलम हाथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां मुराद कलाई है। और इसी कुरान के अंदर एक मरतबा परवरदिगार आलम हाथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां मुराद क्या है? बयान किया वहां तो लफ्ज के साथ इलल मराफिक, कोहनियों से हाथों को धोया जाएगा। तो उसने कहा कि हाथ कोहनियों से काटे जाएंगे, जब चोर के हाथ काटे जाएंगे तो कोहनियों से हाथ काटे जाएंगे। अब परेशान है, दरबार के अंदर सन्नाटा है, ये क्या बात हो गई। एक शख्स कुरान की एक आयत लेकर आया, दूसरा शख्स कुरान की दूसरी आयत लेकर आया, कहा कि भाई क्या किया जाए। एक मरतबा मुल्तफित हुआ, मुतवज्जे हुआ, जहां से उसे पता था कि हकीकी जवाब आने वाला है, मुतसिम मुतवज्जे हुआ इमाम की तरफ और कहा कि यब्न रसूलल्लाह आप बतलाइए कि आपकी क्या राय है। इमाम ने खतरनाक जुमले कहे। इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा कि एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए इमाम की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ने कहा कि तकल्लम अल कौम फीह या, ए शख्स तूने कद तकल्लम फीह कौम या अमीर अल मोमिनीन। अब जाहिर है तकय्ये का दौर था, वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम को इस तरीके से खिताब करना था क्योंकि तकय्ये का दौर था, और खिताब किया है मैं थार अलैहिस्सलाम ने इस लकब के साथ, वगरना तो ये वो लकब था कि जो किसी इमाम के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था सिवाय अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। लेकिन जब दौर तकय्ये का है, जब दौर दीन की हिफाजत का है, सवाल दीन की हिफाजत का है, तो वहां पर जिसको अमीरुल मोमिनीन तो अमीरुल मोमिनीन नहीं है उसे भी अमीरुल मोमिनीन से खिताब किया गया। इमाम ने कहा कि मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, तूने पूछ लिया, लोगों से पूछ लिया, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। कहा कि नहीं, आपको कसम है कि आप जवाब दीजिए। इमाम ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ कि परवरदिगार आलम ने कितने आजा जमीन पर रखना वाजिब करार दिए सजदे में।
सुभान अल्लाह।
अब सवाल देखिए, सवाल ये था कि चोर के हाथ कहाँ से काटे जाएंगे। इमाम जवाब क्या दे रहे हैं, इमाम जवाब ये दे रहे हैं कि ये बतलाओ कि कितने आजा हैं कि जिनको सजदे में रखना जमीन पर वाजिब है, वो जमीन पर रखे जाएंगे तब जाकर सजदा होगा। कहा कि भाई सात आजा है कि जिन्हें जमीन पर रखा जाएगा, उसके बाद जो है वो सजदा होगा। अच्छा, कहा कि अच्छा ये बतलाइए तो फिर हाथ कहाँ से काटे जाएंगे। कहा कि हाथ यहाँ से काटे जाएंगे कि जहाँ से इंसान की उंगलियाँ जुदा होती हैं, उंगलियों से हाथ काटे जाएंगे। जब चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे तो कहाँ से काटे जाएंगे, उंगलियों से काटे जाएंगे। कहा कि क्या सबब है, मल हुज्जत वला दारिक, दलील क्या है। कहा कि दलील ये कि ये बतलाओ कि परवरदिगार आलम ने जिन चीज़ों को सजदे की हालत में ज़मीन पर रखना वाजिब करार दिया है वो कौन कौन सी है। के सात आजा जमीन पर रखना वाजिब है, पेशानी है ना, जबीन इंसान की, और क्या है, कफ़ेन हाथों की हथेलियां, और क्या है, पैरों के घुटने, और क्या है, अंगूठों के सिरे, उस पर रिजलाइन है ना, ये सात आजा है जो जमीन पर रखने हैं। कहा कि परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है इन्नल मसाजिद लिल्लाह, जो सजदा करने की जगह है यानी जो सजदे की हालत में जमीन पर लगने वाली चीजें हैं वो परवरदिगार आलम का हक है, और जो परवरदिगार आलम का हक हो, जो परवरदिगार आलम ने सजदे में जमीन पर रखना वाजिब करार दी है उसे नहीं काटा जा सकता है। लिहाजा चोर के हाथों को अगर काटा जाएगा तो उंगलियों से काटा जाएगा ताकि जब वो सजदे करने की हालत के अंदर जाए तो मसाजिद जो कि अल्लाह की खातिर है वो जमीन पर लग सके। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अगर कलाइयों से हाथ को काटा जाएगा इन्नल मसाजिद लिल्लाह से टकराएगा, अगर कोहनियों से हाथ को काटा जाएगा तो इन्नल मसाजिद लिल्लाह से टकराता हुआ नजर आएगा। ये हैं वो हस्तियां मन इंदहु इल्मुल किताब है, जिनके पास पूरी किताब का इल्म है, इल्म मिनल किताब नहीं है, किताब का कुछ इल्म नहीं है, ये वो है कि जिनके पास कुल किताब का इल्म मौजूद है। ये है अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की हस्ती। वह हफ़ज़त दीनिक व खुलफाक फी अर्दिक, ये सईफ सज्जादिया है। व हुज्जतका अला इबादिक, आप वो हैं कि जो हुज्जत हैं उस पर, परवरदिगार तू तेरे बंदे पर ये तेरी हुज्जत हैं, इन पर दुरूद नाज़िल फरमा। ये है अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की हस्ती। किस अंदाज के अंदर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मोमिनीन की तरबियत करते हुए नजर आते हैं, वाकई हुज्जत पर हुज्जत खुदा किस अंदाज के अंदर परवरदिगार आलम की जानिब से नुमाइंदा है, परवरदिगार आलम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं हुज्जत खुदा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मोमिनीन की तरबियत करते हुए नजर आते हैं किस अंदाज के अंदर, वाकई यानी हमारी जानें कुर्बान हो जाए अम्मा अत्थार अलैहिस्सलाम की जात पर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, एक शख्स आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास और आकर जो है सवार था, घोड़े पर सवार था, सवारी पर सवार था, उमवी लोगों के खानदान में से था, उनकी मदद नुसरत किया करता था। एक मरतबा आया, खच्चर पर सवार था, और आकर कहता है कि लम अरा अहसन वजहन वला सौबन वला खुलकन, मैंने इससे ज्यादा अच्छे लिबास वाला, इतना ज्यादा हसीन, इतना ज्यादा बाखला किसी को नहीं देखा। एक शख्स मौजूद था उसकी निगाहों के अंदर, कौन थे वो? कहता मैं सवाल किया, फसाल तो फकीला हाजा अली इब्न हुसैन इब्न अली। कौन है ये कौन है? सैयदुल शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। कह रहे फाताई तो मैं इमाम के पास आया, वलाकिन न कल्बी यम तले ओ बिल बोगस, लेकिन मेरा दिल जो है ना भरा हुआ था, बोग से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? मेरा दिल बोग अहले बैत से भरा हुआ था। मैंने कहा कि अंता इब्न अली इब्न अबी तालिब, देखिए बोग किससे था? अली इब्न अबी तालिब से था। कहने लगा कि अंता अली इब्न अब अंता इब्न अली इब्न अबी तालिब, आप अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हैं। इमाम ने कहा कि अना इब्न, हाँ मैं अली इब्न अबी तालिब का फर्जंद हूँ। कहने लगा कि बिका वबे अबी का असुब, खुदा की कसम, आपकी कसम, आपके वालिद की कसम, मैं अली इब्न अबी तालिब पर सब करता हूँ, दुश्नाम करता हूँ, नाऊज़ु बिल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। इमाम के सामने कह रहा है, कह रहा है मैं आपके पर दुश्नाम करता हूँ, मैं आपके वालिद पर दुश्नाम करता हूँ, उन्हें बुरा भला कहता हूँ। कहते जब मेरा मैंने जितना बुरा भला कहना था इमाम अलैहिस्सलाम, देखिए ये है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मोमिनीन की तरबियत के अंदाज में, जितना बुरा भला कहना था मैंने कह दिया मैंने इमाम को। जब मेरा पूरा कलाम मुकम्मल हो गया, मेरी मुकम्मल हो गई बात, तो एक मरतबा इमाम ने फरमाया अहसिबुका गरीबा, मेरे ख्याल है कि तू इस शहर के अंदर गरीब है। गरीब अरबी जबान में किसे कहते हैं? यानी कि जिसका वतन ना हो, जो गरीबुल वतन हो उसे गरीब कहते हैं। मेरा ख्याल है कि तू गरीब है। मिल बिना इनदार फैन अहतजता मंजिलन अंजलना, अगर तुझे घर की ज़रूरत है तो मैं तुझे घर दिए देता हूँ, अगर तुझे माल चाहिए वह इला माल इस्तौनाक, मैं तेरी माल की ज़रूरत को पूरा करूँगा, वह इला हाजत आवन्नाक, और अगर तुझे कोई भी ज़रूरत है तो मैं तेरी हाजत को पूरा करूँगा। अब्बा क्या जुमले हैं इसके? फनसरफ तो मैंने आइन दी, जैसे ही मैं इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से मुनसरिफ हुआ गया तो क्या हुआ? वमा अलल अर्ज अहदुन अहब्बु इलैय मिन्हु, पूरी रूए जमीन पर मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई हस्ती थी तो इमाम जनाब दिन अलैहिस्सलाम। क्या था ये इमाम अलैहिस्सलाम का अखलाक, किस अंदाज के अंदर अखलाक, किससे? वो जो इमाम को बुरा भला कह रहा है, वो जो इमाम से नाराजगी का इजहार कर रहा है, ना फकत नाराजगी, इमाम अलैहिस्सलाम को दुष्टाम कर रहा है, सब कर रहा है, लान कर रहा है इमाम अलैहिस्सलाम पर अल अयादु बिल्ला, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम उसे जवाब किस अंदाज के अंदर दे रहे हैं? इमाम अलैहिस्सलाम का ये फेल क्या मोमिनी के लिए तरबियत नहीं है? क्या हमारे और आपके लिए सीखने का मकाम नहीं है ये कि इमाम अलैहिस्सलाम किससे किस अंदाज में बात कर रहे हैं? और हम अपने घर के अंदर भी अपनी जुबानों को सही नहीं रख सकते। अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, अगर किसी से कोई खता हो गई है, किसी को कोई लफ्जिश हो गई है, किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, तो इंसान वहां पर आए और क्या करे? अपना सारा के सारा गुस्सा जो ना फकत इस काम का निकलना चाहिए था, बल्कि पूरी जॉब सुबह से लेकर आखिर शाम तक जो जितना जो है मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था, वो सारा के सारा गुस्सा मैंने उस शख्स पे निकाल दिया। और ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? जो शख्स इमाम को दुश्नाम कर रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बयान कर रहा है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम उसके अपने अखलाक के जरिए से उसकी तरबियत कर रहे हैं और मोमिनीन की तरबियत कर रहे हैं कि देखो क्या करना है। आप एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। मोमिनीन हम और आप आपस में किस अंदाज में हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की खैरख्वाही करनी चाहिए। अगर हमें कभी कोई गुस्सा आ जाता है, अगर हमें कभी कोई बात बुरी लगती है, कोई बात से हम नाला हो जाते हैं, तो उसका एक तरीका, एक अंदाज होना चाहिए सामने वाले बात को, सामने वाले को समझाने के लिए। हत्ता आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर, एक बात जो कही गई कि मसलन ये कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक फेस्टिवल बना दिया गया है और मुख्तलिफ गलत किस्म की जो है चीज़ें हमारे तो हमारे माशरे के अंदर न्याज के तौर पर राइज हो रही है कि जो गम और गुस्से और गम और हुज़्न के जो तसव्वुर है और गम और हुज़्न का जो माहौल है उसे ख़त्म करती हुई नज़र आती है। बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले को झिड़क दूँ, मैं सामने वाले को जाकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर दूँ, उसे जो है वो न जाने किस एजेंसी का एजेंट बना दूँ और मैं उसे कहूँ कि उसे फंडिंग आ रही है और एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें। नहीं, इंसान जाए और प्यार से समझाए इस बात को, देखिए ये जो चीज़ है ये हुज़्न और गम के मुनाफी है, तो वो समझेगा बात को। मैं अपने अखलाक के जरिए से, मैं तरीके से, मैं एक पोलाइट और एक मुनासिब अंदाज के अंदर उससे बात करूँ और उसे समझाऊँ कि ये चीज़ आहिस्ता 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 एक सकाफत और एक कल्चर बन जाएगा और ये चीज़ें सैयद शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के साथ मुनासिब नहीं है, रोज़े आशूर के साथ मुनासिब नहीं है, तासुए के साथ मुनासिब नहीं है, शब आशूर के साथ मुनासिबत नहीं रखती। इन चीज़ों के साथ इंसान गम और अंदोह के उस माहौल के अंदर नहीं रह सकता है। बजाइए कि इंसान जाकर तमाम के तमाम अलकाबात उसे नवाज दे, इसके इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? सामने वाला बंदा बात सुनने के बजाय वो कहता है अगर फंडिंग आ रही है तो अब मैं मजीद फंडिंग करूंगा। यही होता है ना, यानी बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है, बात बनने के बजाय बजाय बिगड़ती हुई चली जाती है और उसके अंदर मैं खुद अपना किरदार अदा कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदाज, मेरा एक्ट, मेरा फेल, मेरा समझाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो शख्स आके इमाम पर दुश्नाम कर रहा है, अगरचे वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर जो शख्स आकर दुश्नाम कर रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम उसे कह रहे हैं कि अगर तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुझे देता हूँ, अगर तुझे घर चाहिए तो मैं तुझे घर देता हूँ, अगर तुझे लिबास किस चीज़ की ज़रूरत है मैं तेरी मदद करूँगा। ये कौन सा अंदाज है, ये कौन सा तरीका? इमाम अपने अखलाक के जरिए से, अपनी तरबियत के जरिए से, अपने अंदाज के जरिए से मोमिनीन की तरबियत भी करते हुए नजर आते हैं कि देखो जब तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा मामला पेश है तो तुम्हें किस अंदाज में लोगों से गुफ्तगू करनी है, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मोमिनीन की तरबियत करते हुए नजर आते हैं। यही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब कोई आकर कहता है कि ऐ सैयद सज्जाद, ये तो आप लोगों की मीरास थी, शहादत तो आपका विरसा था। यही सैयद सज्जाद जब कोई आकर कह रहा है कि शहादत तो आपका विरसा था, आप इतना गिरिया कर रहे हैं, सैयद सज्जाद कितना गिरिया किया? 40 साल गिरिया किया। इतना गिरिए के बाद कहा कि शहादत तो आपकी मीरास है। कहा कि हाँ शहादत तो मेरी मीरास है, लेकिन क्या शाम के दरबार में बीवियों का बाजार में जाना भी मेरी मीरास है? अल्लाह। कहा कि या यूसुफ के, याकूब के कितने फर्जंद थे? फकत एक नजरों से ओझल हुआ था, नजरों से ओझल हुआ था, जिंदा था, जानते थे इल्मे परवरदिगार की जानिब से जो इल्म था उसकी बदौलत जानते थे कि जिंदा है, नजरों से ओझल हुआ था, लेकिन इतना गिरिया किया कि आंखों की बीनाई चली गई थी, मेरे 18 यूसुफ मेरे सामने से भाग गए। अल्लाह अपने आप को करबला के मैदान में लेकर चलते हैं और परवरदिगार की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार जल्द अज़ जल्द हमें भी, हमारी गुनाहगार आँखों को भी वो रोज़ा, वो दीदार नसीब फरमा कि हम भी सैयद शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के सामने खड़े होकर ये जुमले पढ़ सकें। सब मिलकर पढ़िए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वा अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाएक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदं मा बकी وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب ملكر پڑھئے. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. آج جس صحابی کا تذکرہ کر رہا ہے آپ کے سامنے، کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ذر کے غلام تھے، جان، یقیناً آپ نے نام سنا ہے، سیاہ فام غلام تھے ابو ذر کے، اس کے بعد امیر المومنین کے پاس آئے، حسن مجتبیٰ کے پاس آئے، سید الشہداء کے پاس آئے، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں رہا کرتے تھے. کربلا کے میدان میں موجود ہیں جان، اور کیا جملہ کہتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ جان نے امام سے فرمایا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، اللہ اکبر، یبن رسول اللہ، ان ریحی تنتن، میرے منہ سے بدبو آتی ہے سید الشہداء، میرا رنگ سفید نہیں ہے سید الشہداء، میں سیاہ فام غلام ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ کہا کہ لا افارقکم حتی یختلط سود دمائی حتی یختلط ھذا الدم الاسود مع دمائکم. اللہ اکبر. کہا کہ اے سید الشہداء، آپ کی رفاقت نہ چھوڑیں گے، اے آقا ابا عبداللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، آپ کی رفاقت نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ اپنا سیاہ خون آپ کے طیب و طاہر خون کے ساتھ نہ ملا دیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جان نے جنگ کی ہے، شہید ہوئے ہیں. شہید ہونے کے بعد ایک جملہ مقتل کے اندر ملتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جان کے لاشے پر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا ہے جس کے لیے سید الشہداء دعا کر دے. اللہ اکبر. پروردگار ہمارا بھی وہ نصیب لکھے، پروردگار ہمارا بھی وہ مقدر لکھے، پروردگار ہمیں بھی اس لائق بنائے، پروردگار ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ زمانے کے امام ہمارے حق میں دعا کر دیں. کیا دعا کی ہے امام حسین نے جان کے لیے؟ اللہم بیز وجہہ و طیب ریحہ. پروردگار جان کے چہرے کو نورانی کر دے، جان کے جسم سے خوشبو آئے. وحشرہ مع الابرار. پروردگار نیکوکاروں کے ساتھ معشور کر دے. امام یہ دعا دیتے ہیں. وعرف بین و بین محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اور پھر لکھا کہ جب بنی اسد والے لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے تھے نا، تو دیکھا کہ جان کے لاشے سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایک ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے کہ جو سب سے بہترین خوشبو دنیا کی مسک، سب سے بہترین خوشبو، اس سے بھی زیادہ خوشبو جان کے لاشے سے نکل رہی تھی. جب امام علیہ السلام دعا دے دے، اللہم بیض وجہہ و طیب روحہ ریحہ، پروردگار یہ مقام عطا کیا کرتا ہے. سید الشہداء کے اصحاب کا کیا مقام، سید سجاد کے بھی غلام رہے گے، اور سید سجاد کے غلام رہے جان، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. سید سجاد، خود سید سجاد قدم قدم پر اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی مصیبتیں سید سجاد پر پڑی کہ کبھی جان کو بھی یاد کیا کرتے ہوں گے نا کہ اے جان، تم تو بابا کی نصرت میں شہید ہو گئے، کاش کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ہمارے ساتھ ہوتے. ارے میرے ساتھ میری پھوپھی زینب، میرے ساتھ بہن سکینہ، میرے ساتھ اور اہلیان حرم، میرے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات موجود تھی. جان کو یاد کیا کرتے ہوں گے نا کہ جان کاش تم ساتھ ہوتے. اللہ اکبر. تو کوئی تو مدد کرنے والا ہوتا. سید سجاد اپنی مصیبتیں خود بیان کرتے ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ سید سجاد نے اپنی سات مصیبتیں بیان کی ہیں. میں فقط ایک مصیبت آپ کے سامنے پڑھوں گا. سات مصیبتیں بیان کی ہیں، اور ایک مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ جب ہم کوفہ اور شام کے بازار سے گزر رہے تھے نا، تو یزید نے حکم دیا تھا کہ چھتوں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے. अकबर। तसव्वुर कीजिए, अहले बैत अतहार के घराने के लोग हैं, रसूल के फर्जंद हैं, कूफा और शाम के बाजार में किस अंदाज में घुमाया जा रहा है कि छतों पर मौजूद हैं, तमाशाई मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अरे कोई खौलता हुआ पानी फेंकता है, कोई अंगारे फेंकता है, कोई पानी फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, जिसे कुछ ना मिलता था ना, वो खजूर की गुठलियां भी अहले बैत, वो खजूर की गुठलियां भी अहले बैत अतहार के सरों पर फेंका करता था। अल्लाह अकबर, क्या गुर्बत का आलम था, वो क्या मंजर था कि करबला से कूफा और कूफा से शाम में वो क्या मुसीबतें ढाई गई सैयद सज्जाद पर। कहते हैं सैयद सज्जाद कि एक मौका वो आया कि एक मरतबा छत से एक अंगारा फेंका गया, जलता हुआ कोयला फेंका गया, और वो अंगारा मेरे सर पर आकर रुक गया। सैयद सज्जाद ने अमामा पहना हुआ है। कहते हैं कि लेकिन जब अंगारे को हटाया जाता है ना, तो कैसे हटाया जाता है? या तो इंसान अपने सर को हिला लिया करता है, या हाथों से हटा दिया करता है। अरे सैयद सज्जाद, गर्दन में एक खारदार तोक है, इतना वजनी तोक है कि जब मोहम्मद हनफिया गले लगना चाहते थे, कहा कि भैया आहिस्ता, अरे गर्दन में। अल्लाह अकबर। अब सैयद सज्जाद गर्दन हिला नहीं सकते, हाथ पसे पुष्ट बंधे हैं, हाथों से हटा नहीं सकते, अपनी मुसीबत कहते हैं। एक मरतबा वो अंगारा जलता रहा, अमामे को जलाया, सैयद सज्जाद का सर जलता रहा, जब तक वो अंगारा जलता रहा, सैयद सज्जाद का सर जलता रहा। जब मोहम्मद बाकर दफन करने के लिए उतरे होंगे, अरे कौन कौन से निशान सैयद सज्जाद के जिस्म पर देखे होंगे, शायद वो अंगारे का निशान भी हो। करबला का रुख किया, अस्सलाम वालेकुम या अबादिल्ला, बाबा आपके बाद, ए आका अबादिल्ला आपके बाद, सैयद सज्जाद करबला से कूफा और कूफा से शाम, न जाने कौन कौन सी मुसीबतें से। ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस करीब सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान अहले बैत आबाद है, उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जो जो मोमिनीन जिस किस्म की मुश्किलात में परेशान है, रिस्क की मुश्किलात में है, बीमारी की मुश्किलात में है, कैदोबंद की सहूबतों की मुश्किलात में है, साहिब औलाद नहीं है, परवरदिगार जिस किस्म की मुश्किलात के अंदर मुब्तला है, परवरदिगार तमाम की मुश्किलात को गैब से हल फरमा। परवरदिगार तमाम मदालिम का इंतकाम लेने के लिए जमाने के इमाम के जहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد।